कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हमने शमूएल की पुस्तक के 16 अध्याय तक का अध्ययन किया था और आज हम देखेंगे 17 अध्याय से और 18 अध्याय से। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अबशलोम ने दाऊद से विद्रोह किया और इससे पूर्व कि वह यरूशलेम आकर मारकाट करता, दाऊद अपने परिवार और साथियों को लेकर वहां से जंगलों में निकल पड़ा। दाऊद के चले जाने के पश्चात मपीबोशेत के सेवक ने दाऊद को झूठी कहानी सुनाकर मपीबोशेत की संपत्ता को हड़प ली। तब मार्ग में दाऊद का सामना शाऊल के एक कुटुंबी से हुआ। वह उसे कोसने लगा कि वह खूनी है और वह अपने कुकर्म के लिए परमेश्वर से दंड पा रहा है, परंतु दाऊद ने उसे क्षमा किया और उसका काम परमेश्वर की ओर से कह करके स्वीकार किया। इधर अबशलोम यरूशलेम पहुंचा और दाऊद की रखेलियों के साथ खुला व्यविचार किया, जैसा परमेश्वर ने दाऊद से कहा था। मित्रों, हम देखेंगे अध्याय 17 में अहितोपेल और हुशै दोनों अबशलोम को परामर्श देते हैं और अबशलोम हुशै की बात मानता है कि दाऊद और उसके साथी शूरवीर हैं और बच्चा छीनी रिचनी के समान क्रोध से भरे हुए हैं और अबशलोम को सैन्य बल बढ़ाना होगा। इस प्रकार दाऊद को बच निकलने और युद्ध की तैयारी का समय मिल गया और अध्याय 18 में दोनों पक्षों में गृह युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध में अबशलोम मारा जाता है और अध्याय 18 अपने पुत्र के घात किए जाने पर दाऊद के विलाप के साथ अंत होता है। अहितोपेल और हुशै के परस्पर विरोधी परामर्श। आइए हम देखें कि दाऊद के विभिन्न अनुभवों में हमने उसके विजय अभियान को देखे हैं और हम उसके क्लेशों को भी देख रहे हैं और सच तो यह है कि वह इस समय संकटों से घिरा हुआ है। दाऊद का नीच पुत्र, जिससे उसने मनुष्यों में सबसे अधिक प्रेम किया, विद्रोह करता है। वह राज्य के दिल के दुख का कारण था। दाऊद यरूशलेम से निकल गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह स्थान युद्ध का मैदान हो जाए और नष्ट हो जाए। दाऊद तो अपने मन भावन स्थान से चला गया, परंतु उसने हुशै को भेजा कि वह अबशलोम के साथ मिलकर दाऊद के लाभ का परामर्श उसे दे। अबशलोम कभी दाऊद का परामर्शदाता था, परंतु अब वह दल बदल कर अबशलोम के साथ था। अध्याय 17 में वे दोनों अबशलोम को सम्मति देते हैं कि दाऊद को खोजे या ना खोजे। तो आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा है, फिर अहितोपेल ने अबशलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटे दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा और जब वह थकित और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं वे सब भागेंगे और मैं राजा ही को मारूंगा। ध्यान दें, अभिप्राय यह था कि दाऊद के विनाश से विद्रोह थम जाएगा और अबशलोम राजा बन जाएगा। अहितोपेल की सम्मति दाऊद के लिए घातक थी और इस प्रकार थी। दूसरा शमूएल 17 अध्याय उसके 3-4 पद में लिखा है, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा, जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशलोम और सब इसराइली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि अबशलोम भी इस निर्दयी योजना को मान गया। तब आगे लिखा है दूसरा शमूएल 17 अध्याय उसके 5-6 पद में, फिर अबशलोम ने कहा, एरेकी हुशै को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हुशे अबशलोम के पास आया तब अबशलोम ने उससे कहा, अहित्यपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशे ने अबशलोम से कहा, जो सम्मति अहित्यपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिए, यह तो अच्छा हुआ कि हुशे वहां था, उसने इसके विपरीत रणनीति सुझाई। अबशलोम को दिया गया सुझाव वास्तव में बहुत अच्छा था, परंतु दाऊद के पक्ष में था। दाऊद बहुत ही दुर्बल स्थिति में था और उसे समय की घोर आवश्यकता थी, इसलिए उसे यह सम्मति देनी पड़ी। दूसरा शामिल 17 अध्याय उसके 7-10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर हुसै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रिछनी के समान क्रोधित होंगे, और तेरा पिता योद्धा है और लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय तो वह किसी गढ़े व किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले पहले कोई कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे कि अबशलोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी हियाव छूट जाएगा। समस्त इसराइल तो जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हुशे का सुझाव अबशलोम के लिए अच्छा था, जबकि वह दाऊद के हित में था। उसने कहा, अबशलोम तुझे यह समझना है कि तू योद्धा नहीं है, जबकि तेरा पिता एक कुशल योद्धा है। वह रणभूमि से भी परिचित है, वह युद्ध में निपुण है और वह कठोर है। उसके साथ शक्तिमान योद्धा भी हैं। दाऊद और उसके साथी घटनाओं के कारण धोखे में पड़ गए हैं। वे अपने घाव सहला रहे हैं और इस समय बच्चा छीनी हुई रिछनी के सदृश हैं। वे दो गुना खतरनाक हो गए हैं, अतः उन पर आक्रमण करना मूर्खता है। यदि तू उस पर आक्रमण भी करता है तो वह पहले भी पीछा करने वालों को भ्रमित कर चुका है और पीछा करने वालों से बचने के लिए वह युक्तियों से पूर्ण है। शाऊल ने भी उसे वर्षों खोजा था और इस समय वह अपने साथियों के साथ नहीं होगा। उसे छिपने के सब स्थानों का पता है, वह बच निकलना भी जानता है। यदि तू जाकर उसे खोजे और सफल ना हो तो समाचार यही होगा कि तू हार गया, और यही लोग जो अभी तेरे साथ हैं तुरंत तेरे विरुद्ध हो जाएंगे। अब चूंकि हुशे ने अहित्यपेल की सम्मति में त्रुटियां दर्शाई, इसलिए वह दूसरा सुझाव देता है। हम देखेंगे दूसरा शामिल 17 अध्याय उसके 11-12 पद में, इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले समस्त इसराइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए, और जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अबशलोम से कह रहा था, मुख्य बात तो यह है कि तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अहित्यपेल युद्ध के लिए तैयार नहीं है। कुछ हजार सैनिकों के साथ रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम दाऊद को पकड़ लोगे। तुझे जो करना है वह यह है कि समस्त इसराइल को एकत्र करके युद्ध में तू अगुवाई कर। राजा से यही अपेक्षा की जाती है, और तेरा पिता भी इसी प्रकार सिंहासन तक पहुंचा था। वह सबसे पहले एक महान सेनापति था। अब हमें जो करना है वह यह है कि बहुत बड़ी संख्या में उस पर प्रभावी हो। हुशे की सुझाव तो बहुत अच्छी थी, परंतु अबशलोम के लाभ का नहीं था, यह दाऊद के लाभ के लिए था। इस प्रकार दाऊद को टोह लेने का समय मिलेगा। दूसरा शामुएल 17 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा हुआ है, तब अबशलोम और सब इसराइली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशे की सम्मति अहित्यपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहित्यपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल कर दिया, अर्थात करने के लिए ठाना था कि यह अबशलोम ही पर विपत्ति डाले। मेरे मित्रों, अबशलोम और उसके साथियों ने हुशे की राय को उचित जाना, और स्पष्ट बात तो यह है कि दाऊद के दृष्टिकोण से हुशे का सुझाव वास्तव में अहित्यपेल के सुझाव से अच्छा था। परमेश्वर दाऊद की ओर से सक्रिय था। हम आगे देखते हैं दाऊद को सतर्कता का संदेश। इधर वे संपूर्ण राष्ट्र को संगठित कर रहे थे कि हुशे ने दाऊद को तुरंत ही यर्दन पार करने का संदेश भेजा। अगले कुछ पदों में हम गुप्त संदेश की प्रक्रिया को देखते हैं। संदेश पाकर दाऊद ने तुरंत ही कदम उठाया। दूसरा शामुएल 17 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद अपने संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पह फटने तक उनमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। ध्यान दीजिए, अहितोपेल द्वारा आत्महत्या के बारे में हम आगे देखते हैं। अहितोपेल घमंडी मनुष्य था और उसे सर्वोत्तम परामर्शदाता भी माना जाता था। उसने देखा कि उसका सुझाव ठुकरा दिया गया है, तब उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा और लिखा है कि उसने अपनी वसीयत बनाई और आत्महत्या कर ली। मेरे मित्रों, अबशलोम दाऊद का पीछा करता है और अबशलोम ने इसराइल के सब गोत्रों में से सेना तैयार की और दाऊद का पीछा किया। दूसरा शमूएल 17 अध्याय उसके 24 से 26 पद में लिखा हुआ है, दाऊद तो महनेम में पहुंचा और अबशलोम सब इसराइली पुरुषों समेत यरदन के पार गया और अबशलोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया और अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इसराइली इत्रो था और वह योआब की माता सरुयाह की बहन अबिगेल नाम नहाश की बेटी के संग सोया था और इसराइलियों ने और अबशलोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। ध्यान दीजिए कि दाऊद के जीवन का बड़ा भाग बैरियों से बचकर भागने में ही व्यतीत हुआ है। इस बार तो वह अपने ही पाप के कारण भाग रहा था। दाऊद बहुत बुरी स्थिति में था। वह बिना किसी तैयारी के यरूशलेम से भागा था और उसके विश्वास योग्य पात्र उसके साथ हो लिए थे। हम दूसरा शमूएल 17 अध्याय 27 से 29 पद में पढ़ते हैं, जब दाऊद महनेम में आया तब अमोनियों के रब्बा के निवासी नहाश का पुत्र शोबी और लोदबरवासी अमीएल का पुत्र माकिर और रोगलिम वासी गिलादी वर्जिल्ले चार पाइया तसले मिट्टी के बर्तन गेहूं जौ मैदा लोबिया मसूर चबेना मधु मक्खन भेड़ बकरिया और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए कि जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। मेरे मित्रों, दाऊद ने देखा कि आसपास के क्षेत्रों में उसके अनेक मित्र थे। वे दाऊद को जानते थे कि वह कैसा योद्धा था। इन राष्ट्रों के शासकों को अबशलोम में अधिक विश्वास नहीं था। उन्होंने देखा था कि वह चतुर एवं धोखेबाज था। वह विश्वास के योग्य नहीं था, परंतु दाऊद पर उन्हें पूरा भरोसा था। अतः वे दाऊद और उसके साथियों के लिए भोजन वस्तुएं लाते हैं। अबशलोम के विलंब के कारण दाऊद अपने मित्रों से भोजन वस्तुएं पाने और युद्ध के लिए सेना तैयार करने में सक्षम हुआ। आइए आगे देखें गृह युद्ध। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने अपने संघ के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिहाई तो योआब के और एक तिहाई सरुयाह के पुत्र योआब के भाई अभिषेक के और एक तिहाई गति इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे मित्रों, दाऊद अपने साथियों के साथ युद्ध के लिए कूच करना चाहता था। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शमूएल 18 अध्याय के 3 पद में, लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के 10,000 पुरुष हैं। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। उसके साथियों ने उसे युद्ध में जाने से रोक दिया। दूसरा शमूएल 18 अध्याय 4 और 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1,000-1,000 करके निकलने लगे। और राजा ने युवाब अभिषेक और इत्ते को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। ध्यान दीजिए, दाऊद के जीवन में यह अध्याय गहरे दुखों के अध्यायों में से एक है। दाऊद के पाप का अध्याय सबसे अधिक घृणित है, परंतु यह अध्याय सबसे अधिक दुख भरा है क्योंकि इसमें दाऊद के पुत्र अबशलोम की मृत्यु हो जाती है। दाऊद के साथियों ने उसे युद्ध पर चलने से रोक दिया था। वह एक ओर खड़ा होकर सेना का प्रस्थान देख रहा था। 3 सेनापति अगुवाई कर रहे थे, युवाब अभिषेक और इत्ते। जब ये सेनापति एक एक करके दाऊद के सामने से निकल रहे थे, तब दाऊद ने हर एक से कहा कि उसके पुत्र के साथ दया का व्यवहार करें। पूरी सेना ने दाऊद के इस आदेश को सुना था। मेरे विचार में कुछ मुस्कुराए और कुछ में बदले की भावना जागृत हुई होगी। अब्सलोम सदा का अनाचारी था और होगा भी, इस कारण वे उसका अंत भी करना चाहते थे। तथापि दाऊद अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपने सेनापतियों से कहा, मेरे पुत्र को दया दिखाना। दाऊद के साथियों ने सुना कि दाऊद ने क्या कहा था। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 6 और 7 पद में। सो लोग इसराइल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रेम नाम वन में युद्ध हुआ। वहां इसराइली लोग दाऊद के हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। मेरे मित्रों, यह गृह युद्ध था और बहुत ही अनर्थकारी था। दाऊद रण कौशल में निपुण था और एक महान सेनानायक था। अब्सलोम के साथ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दाऊद की योग्यता या उसके तीनों सेनापतियों की कुशलता के बारे में बराबरी करता। अतः इसराइली युद्ध में हार गए। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनमें से अधिक वन के कारण मर गए। दाऊद की सेना के सामने से अब्सलोम के सैनिक भागे और एप्रेम के जंगल में उलझ गए, वे घिर गए और उनमें से अधिकांश तलवार की अपेक्षा जंगल में मारे गए। उन्होंने दाऊद से युद्ध करने के लिए गलत स्थान चुन लिया था। आगे देखते हैं युआब के हाथों अब्सलोम की हत्या। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, संयोग से अब्सलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अब्सलोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने युआब को बताया कि मैंने अब्सलोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा है। मेरे मित्र, अब्सलोम खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बांज वृक्ष के नीचे से निकला और उसका सिर उस बांज वृक्ष में फंस गया, उसका खच्चर निकल गया, वह वहां लटका हुआ था। और ऐसी ही स्थिति में बड़ी हास्यपद बात होती है, परंतु यहां यह अत्यधिक खतरनाक बात थी। दूसरा शमूएल 8 अध्याय उसकी 11 पद में लिखा है, युआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा? फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तो मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटीबंध देता। यहां पर देखिए कि वह व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि युआब दाऊद के पुत्र को घात करना चाहता है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 8 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, उस मनुष्य ने युआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1,000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं, तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषेक और इत्तै को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अब्सलोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। उस सैनिक ने कहा कि राजा की आज्ञा के अनुसार हमें राजकुमार की हानि नहीं करना है, और यदि मैं उसको मार भी देता हूं तो तू मेरा विरोधी ठहरता। युआब के पास विवाद का समय नहीं था, वह तो अपना काम तुरंत निपटाना चाहता था। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 14 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, युआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अब्सलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब युआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अब्सलोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर युआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इसराइल का पीछा करने से लौटे, क्योंकि युआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अब्सलोम को उतार के उस वन में के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। अब्सलोम के मरते ही विद्रोह का दमन हो चुका था। युआब को अब्सलोम की हत्या करने का अधिकार तो नहीं था, और विशेष करके जब राजा ने यह आज्ञा दी थी कि उसे कोई हानि न करे। वह वास्तव में अब्सलोम के आतंकवाद से थक चुका था और जानता था कि अब्सलोम की मृत्यु के बाद ही इस विद्रोह का अंत होगा। तब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 19 से 22 पद में, और सादोक के पुत्र अहिमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कूशी से कहा कि जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। तो वह कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहिमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है। योआब अहिमास को राजा के पास भेजने में संकालु था कि वह उसे अबशालोम की मृत्यु का समाचार राजा को सुनाए, क्योंकि उसके पास राजा को सुनाने के लिए पूरा समाचार नहीं था। आगे देखते हैं कि अबशालोम के लिए दाऊद का विलाप। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहिमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में यह सबसे अधिक मर्म स्पर्शी दृश्य है। दाऊद नगर के द्वार पर बैठा है और बैठकर समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है, और तब इस प्रकार की बातों को होते हुए हम देखते हैं। आगे लिखा है दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 25 से 29 पद में, जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेशा लाता होगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटा के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेशा लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहिमास का सा है। राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य है, तो भला संदेशा लाता होगा। तब अहिमास ने पुकार के राजा से कहा, कल्याण। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या उस जवान अबशालोम का कल्याण है? अहिमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। मित्रों, दाऊद ने अहिमास से एक ही बात पूछी, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? परंतु अहिमास के पास पूर्ण समाचार नहीं था, वह अबशालोम की मृत्यु के विषय नहीं जानता था। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आज भी अनेक सुसमाचार वाहक घूम रहे हैं, जो मनुष्यों से कहते हैं कि परमेश्वर कहता है सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है। मनुष्य पापी है और उसे उद्धारक की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र उसके लिए क्रूस पर मरा। मनुष्यों को नया जन्म पाने की आवश्यकता है। अहिमास के पास वह संदेश नहीं था जो दाऊद सुनना चाहता था। हम दूसरा शमूएल 18 अध्याय के 31 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब कूशी भी आ गया और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। यहाँ ध्यान दीजिए कि दाऊद का प्रथम प्रश्न अबशालोम के कुशल का था। उसकी मुख्य चिंता यह नहीं थी कि किसने युद्ध जीता, अपितु यह कि अबशालोम सुरक्षित था या नहीं। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 32 पद में हम पढ़ते हैं, राजा ने कूशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम कल्याण से है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरे हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कूशी के पास सही समाचार था। उसने बड़ी सावधानी से दाऊद को अबशालोम की मृत्यु का समाचार सुनाया। दाऊद अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगा। दाऊद का यह विलाप बाइबल या अन्य साहित्य में सबसे अधिक मर्म स्पर्शी को अभिव्यक्त करता है। इस स्थान पर मन से यह प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, तूने दाऊद को बहुत दंड दे दिया है, अब अपने पुत्र दाऊद को छोड़ दे। तब हम इस अध्याय के आखिरी पद को पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे हाय, मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता, हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर एक पिता और पुत्र के उस महान प्रेम को हम देखते हैं, क्योंकि पिता हमेशा अपने बेटे से प्रेम करता है, चाहे वह कितना ही दुष्ट क्यों ना हो। परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, और वह चाहता है कि हम अपने पापों से अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं, ताकि हम उसके निज बेटे बन जाएं, पापों से छुटकारा पाकर एक अच्छा और आत्मिक जीवन जी सकें, उस उद्धार के आनंद को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मेरे मित्र, आज आपसे भी परमेश्वर यही चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास लौट आएं? क्योंकि वह आपसे बहुत प्रेम करता है, वह चाहता है कि आप लौट आएं, उससे प्रेम करें। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आज आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? इस प्रकार का प्रेम निश्चय ही हमारे जीवन के लिए आशीषमय प्रेम है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।